الحمد لله وكفى وسلام على العباد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری درس قرآن کی کلاس ہے جس میں ہم معرفت قرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی چھٹی جلد میں سے سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ان میں ان آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا. تو سورۃ الانبیاء کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب انبیاء علیہ السلام کا واقعات ذکر کرتے ہیں کہ واقعات ذکر کرتے ہیں اور ان میں جو آخری واقعہ ہم نے پڑھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا کہ کیسے ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کری، توبہ اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے آتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں وہی الفاظ عطا فرما دیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی الفاظ عطا فرما دیے کہ جن الفاظ کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے اوپر سے ایک مصیبت کو ٹالا. ٹھیک ہے، یعنی یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا اجتہاد کر کے جب نکل پڑے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی وہ والی بات، حالانکہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان والے تھے اور نبی تھے اور ساری زندگی جو ہے وہ نبوت کی جو ان کی زندگی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو پھر وہ سارے عبادتیں، سارے مجاہدات، ساری محنتیں وہ پھر ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ایک طرف. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا کہ ان کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا اور وہ انتہائی تاریکیوں کے اندر پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب اپنی اس غلطی کے اوپر معافی مانگی. یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے ریئلائز کیا نا کہ یہاں جو میں پہنچا ہوں تو یہاں پر میں اتفاقیہ طور پر نہیں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، کہ بس میں چونکہ میں سمندر میں اتر گیا تھا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی سمندر میں تو مچھلیاں ہوتی ہی ہیں نا، سمندر میں تو مچھلیاں ہوتی ہی ہیں تو اب کسی مچھلی نے مجھے نگل لیا تو میں یہاں پہ پہنچ گیا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا. مجھ سے پہلے بھی پتا نہیں کتنے انسانوں کو سمندر کی مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا تو مجھے بھی کھا لیا، ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی. نہیں، یونس علیہ السلام نے اس طرح کی سوچ اپنے اندر آنے ہی نہیں دی. جیسے کہ ہم اپنے اندر ہر وقت بھری رکھتے ہیں نا کہ یہ تو اتفاقیہ ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی جو ہے وہ گرمی پڑتی ہے، کبھی جو ہے وہ مال کے اندر جو ہے وہ کاروبار میں فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں، ہم ایسے سوچتے ہیں. لیکن جو عقل والے ہوتے ہیں، لب والے ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں سوچتے. وہ کیسے سوچتے ہیں کہ یقیناً میں جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، یہ اتفاقیہ طور پر نہیں ہو گیا ہے، یہ میرے کسی غلطی، کسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے، تو مجھے اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے اور مجھے اپنے رب سے اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یونس علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی کیا اور انہوں نے ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, के ए अल्लाह आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ठीक है, कोई बंदगी के लायक नहीं है, और आप तो पाक हैं, यानी जो कुछ करते हैं वो आप ही करते हैं, लेकिन आपके कामों के अंदर कोई गलती कोताही नहीं होती। यहां पर गलती कोताही क्या मसला अपना फंसा हुआ है ना, खुद जो है वो फंसे हुए हैं मछली के पेट में, और बैठ करके जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना शुरू कर दें कि अल्लाह आपने कितनी अच्छी चीजें बनाई हैं, माशाल्लाह क्या बात है अल्लाह आपकी, राइट, आपने कितने अच्छे दरख्त बनाए, कितने अच्छे आपने बादल बनाए, कितने अच्छे पहाड़ बनाए, कितनी अच्छी जमीन बनाई, कितने अच्छे आसमान बनाए, कैसे आसमान को आपने बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया है ना, कैसे जो है वो जमीन को जो है वो बगैर यानी बिछौना बना दिया। एक होता है ना भाई कि हम बैठे बैठे जो है वो अल्लाह ताला की शान बयान करना शुरू कर दें, ठीक है, कि भाई आपने इतनी अच्छी चीजें बनाई हैं, आपके जो है वो आप जो है वो शिर्क से पाक हैं, राइट, वो भाई वहां बैठ करके आपको कोई और काम नहीं मिला, आप बैठ करके जो है वो सारे सारे जहान की तारीफें कर रहे हैं बैठ करके, ठीक है, बल्कि नहीं, यूनुस अलैहि सलाम यहाँ पे बैठ करके अल्लाह ताला की तस्बीह वैसे बयान नहीं कर रहे थे जैसे कि एक आम हालात में इंसान बयान करता है, ठीक है, आम हालात के अंदर जब इंसान अपने घर में रह रहा होता है, इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चल फिर रहा होता है, तो चलते फिरते जो है ना वो अल्लाह ताला की मखलूक को देखता है और अल्लाह ताला की शान बयान करता है, अल्लाह आप तो बड़े पाक हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यूनुस अलैहि सलाम ये कर रहे थे बैठ करके वहां पर मछली के पेट के अंदर? नहीं, यूनुस अलैहि सलाम ये नहीं कर रहे थे मछली के पेट में बैठ करके, यूनुस अलैहि सलाम ये नहीं कर रहे थे, बल्कि यूनुस अलैहि सलाम वाज एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली यानी बिल्कुल तखस्सुस के साथ खसूसियत के साथ वो ये बात कर रहे थे कि ए अल्लाह मैं जो यहां पर पहुंचा हूं, मैं जो मछली के पेट में पहुंचा हूं, मैं जो इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हूं, ये आपने मुझे गिरफ्तार किया है, आपने मुझे इस मुसीबत में पहुंचाया है, और बिल्कुल सही पहुंचाया है, बिल्कुल सही पहुंचाया, आपने गलत नहीं पहुंचाया, आपने मेरे ऊपर जुल्म नहीं किया। जुल्म कहते हैं हद से तजावज कर जाने को, जो काम करना चाहिए था उसकी बजाय कोई और काम करना शुरू कर देना, राइट, किसी को कुछ मिलना चाहिए था उसकी बजाय उसको कुछ और दे देना, ये जुल्म कहलाता है, ठीक है ना, जिसको जो मुकाम पे रखना था उस मुकाम के बजाय उसको किसी और मुकाम पे रख दिया, है ना, समवन डिजर्व्ड टू बी रिस्पेक्टेड उसको आपने जलील करना शुरू कर दिया, कोई जो है वो जिल्लत का मुस्तहिक था उसको आपने इज्जत देनी शुरू कर दी, ये सब जुल्म कहलाता है, ठीक है। तो ऐ अल्लाह आपने कोई जुल्म नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं करी, आपने कोई मिस जजमेंट नहीं करी, राइट, आपने कम सजा देनी चाहिए थी लेकिन बड़ी सजा दे दी, नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह इतना भी ना करें यार, राइट, इतना भी जो है वो आप ना आजमाए, क्या मतलब इतना भी ना आजमाए, जितना अल्लाह ताला को आजमाना चाहिए था अल्लाह उससे ज्यादा आजमा रहे हैं, अल्लाह ताला को कैलकुलेशन करने नहीं आती, अल्लाह ताला को कैलकुलेशन सही करनी नहीं आती, हमारे जो कैलकुलेटर है ना छोटा सा एक कैलकुलेटर होता है वो बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेशन कर लेता है ना, हमारा बनाया हुआ जो कंप्यूटर होता है वो बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेशन करता है, और हमें बनाने वाला परवरदिगार जो है ना वो कैलकुलेशन के अंदर गलती कर जाता है, नाउज बिल्ला, ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें जितनी मुसीबत मिलती है ना ये उतनी ही होती है कि जितनी हम डिजर्व करते हैं, जितनी हम डिजर्व करते हैं, जितने के हम मुस्तहिक हैं, हमें उतनी ही मुसीबत मिलती है, या हमारे ऊपर जो आजमाइश आती है, एक तो है ना मुसीबत यानी गुनाह की सजा, और एक होती है कि अल्लाह ताला टेस्ट पेपर देते हैं हमें, टेस्ट पेपर, ठीक है ना, तो टेस्ट पेपर जो है ना वो हमें वही टेस्ट पेपर मिलता है कि जो कि हम हमारी इस्तेदाद के मुताबिक होता है ना, या जिस कई दफा एक मिसाल से इस बात को समझा चुका है कि किसी स्कूल के जो है ना वो एग्जाम्स हो रहे थे, है? पूरे स्कूल के एग्जाम्स, तो वैसे नॉर्मली तो स्कूल्स के एग्जाम ऐसे होते हैं ना कि हर क्लास के बच्चे अपनी क्लास में बैठे होते हैं, वहां पे ला करके उनको एग्जाम पेपर दे देते हैं, टेस्ट पेपर दे देते हैं। 8th क्लास के बच्चे 8th क्लास के अंदर बैठे हुए होते हैं, जो उनकी डेजिग्नेटेड क्लास होती है, तो वहां पे ला करके जो टीचर है वो 8th क्लास का एग्जाम पेपर उनको ला के दे देता है। ठीक है, 9th क्लास के बच्चे जो है वो अपनी क्लास में बैठे होते हैं, वहां पे 9th वाला पेपर ला के उनको दे दिया जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना कि एक बड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल है, उसके अंदर सारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। मदारिस में ऐसे होता है, मदारिस में जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो सारे मदरसे के बच्चे एक ही हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं। और उसमें फिर क्या करते हैं कि जो बच्चों को बिठाने की तरतीब होती है ना, वो इस तरह करते हैं कि जो जो सेकंड क्लास का बच्चा है उसके पीछे जो है ना, वो सेकंड क्लास के बच्चे को नहीं बिठाते, बल्कि 4th क्लास के बच्चे को बिठाते हैं। फिर 4th के पीछे जो है वो 7th क्लास के बच्चों को बैठाते हैं, 7th के पीछे जो है वो 6th क्लास के बच्चों को बैठाते हैं, है ना। फिर 6th के पीछे जो है ना, फिर वो 8th क्लास के बच्चों को बैठाते हैं। यानी वो इस तरीके से ना मिक्स कर देते हैं बच्चों को, ताकि कोई क्लास का बच्चा बराबर में ना बैठे, चीटिंग का कोई इहतमाल ही ना हो। एक ही क्लास के बच्चे आपस में बैठेंगे ना करीब करीब, तो वो आपस में चीटिंग कर सकते हैं। भाई फरिश्ते तो नहीं है ना, ठीक है मदरसे के बच्चे हैं, दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत नेक होते हैं, लेकिन फरिश्ते तो नहीं होते। कभी किसी बच्चे को मुसीबत पड़े, नहीं समझ में आ रहा, वो हो सकता है बराबर वाले से पूछ ले, ताक झांक कर ले। तो इस तरीके से ना मिक्स करके बिठा देते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सारे बच्चों को मिक्स करके बिठा देते हैं। अब जो मुमतहन होते हैं ना, एग्जामिनर जो होते हैं या इन्विजिलेटर जिनको कहते हैं, तो वो जो है ना फिर पेपर्स लेकर के आते हैं और हर ग्रेड के बच्चे को उसी का पेपर देते हैं, है ना। सेकंड क्लास के बच्चे को सेकंड क्लास वाला ही पेपर देते हैं, उसको 8th क्लास वाला पेपर नहीं पकड़ा देते। 10th क्लास वाले को जो है वो 1st क्लास वाला पेपर नहीं पकड़ा देते, 1st क्लास वाले को जो है वो 6th क्लास वाला पेपर नहीं पकड़ा देते, है ना। भाई जितना बच्चा, जितने उसने तैयारी करी हुई है, जितनी उसकी इस्तेदाद है, उसको उतना ही पर्चा पकड़ाते हैं, है ना। अच्छा, अगर इन्विजिलेटर से जो है वो गलती हो जाए, वो 6th वाले को जो है वो 7th का पर्चा पकड़ा दें, वो 8th वाले को जो है वो 2nd का पर्चा पकड़ा दें, वो 1st वाले को जो है वो 10th का पर्चा पकड़ा दें। बात समझ आ रही है, मैं तो बोले चले जा रहा हूँ, आप तो फॉलो भी कर पा रहे हैं। 1 मिनट तो पंखा तेज करके आता हूँ, फिर गर्मी हो रही है, कोई फॉलो ना कर पा रहा हो तो बताएं। जी ठीक है ना, तो जिस क्लास का बच्चा होता है उसको उसी क्लास का पर्चा पकड़ाते हैं ना। अगर इनविजिलेटर से गलती हो जाए तो क्या कहा जाएगा, यही कहा जाएगा ना कि इन लोगों का तो निजाम ही सारा का सारा खराब है, राइट। इनको तो जो है ना वो एग्जामिनेशन एडमिनिस्टर करना ही नहीं आता, है ना। अजीब मिस मिसमैनेजमेंट किस्म, मिसमैनेज करने वाले लोग हैं, अजीब किस्म के लोग हैं, इनको तो एग्जाम कंडक्ट करना नहीं आता, है ना। तो ये जो एग्जाम वाले लोग होते हैं ना, ये ऐसा नहीं करते, ये बड़े एहतियात से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा परवरदिगार, ठीक है ना, हम अपने परवरदिगार के बारे में क्या गुमान रखते हैं, नाउज बिल्ला, उसको तो एग्जाम कंडक्ट करना नहीं आता। अल्लाह को तो एग्जाम कंडक्ट करना आता ही नहीं है ना। मेरी तो इतनी इस्तेदाद नहीं थी इतनी आजमाइशों की, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी आजमाइश दे दी, और वो देखो है, उसको तो ज्यादा मिलनी चाहिए थी, और वो इतनी ठाट की जिंदगी गुजार रही है, वो इतनी ठाट की जिंदगी गुजार रही है, इतनी ऐश की जिंदगी गुजार रही है। हालांकि गुनाह देखो उसके, उसकी हरकतें देखो, देखो उसकी जुबान देखो, कैसी उसकी जुबान चलती है, कैसे वो जो है ना वो लोगों को झूठ बोलती है, धोखे देती है, और कितने मजे की जिंदगी गुजार रही है। उसके ऊपर तो कोई मुसीबत ही नहीं आ रही, सारी तो मेरे ऊपर आ रही है। क्या कह रहे हैं हम असल में, हम असल में यही कह रहे हैं कि नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, असल में हम यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को टेस्ट कंडक्ट करना नहीं आता, नहीं आता अल्लाह ताला को टेस्ट कंडक्ट करना, ठीक है ना। मैं जो हूं डिजर्व करती थी 1st क्लास का पेपर, मुझे उठा के दे दिया 10वीं क्लास का पेपर, और जो डिजर्व करती थी 10वीं क्लास का पेपर, उसको उठा के दे दिया 2री क्लास का पेपर, राइट। आजमाइशें बांटनी अल्लाह को नहीं आती, मुसीबतें बांटनी अल्लाह को नहीं आती, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली यही बात कही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, आपने जो मुझे मुसीबत दी है ये एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी मैं डिजर्व करता था। आप गलती नहीं करते इस मामले के अंदर, बिल्कुल गलती नहीं करते, है ना, किसी मामले में गलती नहीं करते, यानी कि खाली इस मामले में, किसी मामले में आप गलती नहीं करते। इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, गलती करने वाला तो मैं हूं, गुनाह करने वाला मैं हूं, जुल्म करने वाला। तो हम जब तस्बीहें फेरते हैं 200 मरतबा आयत करीमा का विर्द कर लो, हमारे जहन में ऐसी कोई बात होती है? हमें तो पता ही नहीं होता, हम पढ़ के आ रहे हैं, या अगर तर्जुमा किसी को पता चल भी गया तो सोच तो इस तरफ जाती नहीं है। सोच में तो ये वहमो गुमान में ये वाली बात नहीं आती ना हमारे, कि ये यूनुस अलैहि सलाम ने कड़ा क्या था वहां पे जाकर के, पढ़ा क्या था वहां पे जाकर के। हमारे वहमो गुमान हमारे सोचों के अंदर तो नऊज बिल्ला अल्लाह ताला के ऊपर तोहमत आ रही होती है, तोहमत है ना, हमारे दिलों में तो अल्लाह के ऊपर तोहमत होती है, बोहतान लगा रहे होते हैं हम अल्लाह ताला के ऊपर अपने दिलों के अंदर, ठीक है, और अपने आप को जो है ना वो फिर भी एट द सेम टाइम जो है ना वो हम ये भी समझ रहे होते हैं कि हम तो अल्लाह के वली हैं। किसी को सच्चे ख्वाब आ जाते हैं है ना, तो वो समझता है कि भाई पता नहीं, वो तो सब समझते हैं, सब पता है उनको, झूठ बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, पता उनको यही होता है, सब पता है मुझे तो, सच्चे ख्वाब आ रहे हैं मुझे तो। सच्चे ख्वाब क्या फिरौन को नहीं आया था? बताए ना जरा, बड़ी खवातीन को सच्चे ख्वाब आते हैं, फिरौन को सच्चा ख्वाब नहीं आया था, झूठा ख्वाब आया था फिरौन को, जो अजीज मिस्र था, काफिर था, मुसलमान भी नहीं था ना, काफिर था ना, उसको सच्चा ख्वाब आया था कि नहीं आया था? तो सच्चा ख्वाब आने से कोई मुसलमान बन सकता है? सच्चा ख्वाब आने से कोई अल्लाह का दोस्त बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, वरना फिरौन जो है ना वो अल्लाह का दोस्त होता ना उसबिल्ला, उसको तो सच्चा ख्वाब आया था ना कि एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बड़ा होकर के जो है मुझसे मेरी सल्तनत छीन लेगा। क्या झूठा ख्वाब था ये? 100% सच्चा ख्वाब था, लेकिन रहा वो फिरौन का फिरौन, वैसे ही रहा वो, अजीज मिस्र भी अजीज मिस्र ही रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख्वाब की ताबीर करके उसको बताया, और फिर वो बाद में जाकर के जो है वो नेक बन गया। उस वक्त तो वो नेक नहीं बना ना, कि मुझे ख्वाब अच्छे आते हैं इसका मतलब मैं नेक हूं। तो हम ना इस तरीके से अपने मोतकिद बन के फिर रहे होते हैं, हम अपने गुनाहों को नहीं देख रहे होते, अपनी गलतियों को नहीं देख रहे होते, हम तौबा नहीं कर रहे होते अपने गुनाहों से। इस वजह से मुसीबत जो होती है ना, वो टलना तो दूर की बात, वो बढ़ती रहती है खाली हमारे ऊपर, और हम अपने गुनाहों के अंदर मजीद बढ़ते ही रहते हैं खाली, ठीक है ना। हमारे गुनाह जो है ना वो फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि हकीकत तो ये है कि हम गुनाहों का पीछा नहीं छोड़ते, हम गुनाहों का पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। तो गुनाहों का पीछा छोड़ने के लिए लाजमी है कि हम जो है ना वो अपनी अनानियत इसको छोड़े, फिर अपनी अनानियत को छोड़े, अपनी अना को जो है ना वो जरा सा साइड पर रखें, और फिर सीखें, सीखना शुरू करें। ये सबसे पहले क्या सीखना शुरू करें कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं। ये पहला इल्म है जो कि इंसान को सीखने की जरूरत है, मैं कौन सी गलती कर रही हूं, क्या गलती कर रही हूं। ये पहला सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए, पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल आप बताएं, दूसरा सवाल जिसका जवाब हमें चाहिए। पहला सवाल है मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका जवाब मिल गया, ठीक है ना। जब कोई इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, सीखता है, तो उसको इसका जवाब मिल जाता है। अल्लाह से दुआएं भी करता है, जाहिर है दुआ तो सबसे पहले होती है, और फिर दवा करता है यानी सीखता है कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूं। अब दूसरा जवाब आप बताएं जो उसको चाहिए होता है, या दूसरा सवाल क्या होना चाहिए इसके बाद। डायरेक्ट मैसेज में क्यों ऐसी बातों को लिखते हैं? हाउ कैन आई फिक्स इट, इस गलती को दूर कैसे किया जाए, इस गलती को ठीक कैसे किया जाए, कैसे अपनी गलती दूर की जाए, ये कैसे, कैसा, हाउ, राइट, ये दूसरा सवाल होता है, ठीक है ना। इसको सीखना पड़ता है, कैसे इस गलती को फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए, ठीक है ना। ये है उलूम, जिन उलूम से जो है ना इंसान की इस्लाह होती है, ठीक है। बाकी किताबें पढ़ने से और कहानियां पढ़ने से और किस्से पढ़ने से और तारीख पढ़ने से और मुस्तकबिल पढ़ने से कि जी आगे क़यामत के दिन ये होने वाला है, या क़यामत के दिन का तो खैर मतलब वो तो जाहिर है, मतलब क़यामत के निशानियां ये हैं और फलानी, भाई वो सब भी उलूम हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर रहा, वो तो उलूम हैं। लेकिन जब अगर ये दो सवाल नहीं पूछे, इन दो सवालों का जवाब अगर नहीं मिला ना, तो सारी क़यामत की निशानियां इंसान के लिए बेसूद हैं, कोई फायदा नहीं क़यामत की निशानियों का मालूम करके या आखिरत के हालात का मालूम करके, कोई फायदा नहीं हो रहा इसको, जब तक इसके इन दो सवालों का जवाब नहीं मिल रहा इसको, है ना, कि क्या गलती कर रहा हूं और इस गलती को मैंने फिक्स कैसे करना है, और फिर उसके बाद अमल तो उसके बाद शुरू होगा। ये तो इल्म है, इल्म जब तक नहीं हासिल होगा अमल कैसे हो सकता है? अमल की तो नौबत ही नहीं आएगी ना जब तक इल्म ही हासिल नहीं हुआ। अमल किस चीज पे कर रहे हैं भैया, जब पता ही नहीं है कि करना क्या है तो आप किस चीज के ऊपर अमल कर रहे हैं? ठीक है ना, पहले तो पता करें ना करना क्या था और कैसे करना था। ठीक है, तो आयत करीम ये असल में ये चीज है। ठीक है ना, बाकी वजीफे, वजीफों का मामला ये है कि ठीक है जी आपका कोई मसला हल हो भी सकता है ना, आपने स्टेरॉइड खा ली। वजीफों की मिसाल जो होती है ना वो स्टेरॉइड जैसी, स्टेरॉइड समझते हैं उसको उर्दू में कहते हैं कुश्ता, राइट। एक बड़ी पावरफुल और गर्म किस्म की एक दवा होती है जिसको खाने से जो है ना वो एक इमीडिएट एक रिएक्शन शुरू हो जाता है इंसान के अंदर, एक इमीडिएट इफेक्ट आता है ना, स्टेरॉइड्स कहते हैं उसको अंग्रेजी के अंदर। तो स्टेरॉइड जो होते हैं ना ये लॉन्ग टर्म हल नहीं होते, मसलों के लॉन्ग टर्म हल नहीं होते। हाँ इमीडिएट हल हो जाता है इससे, अक्सर औकात हो जाता है, कभी इससे भी नहीं होता। ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म हल क्या है कि मसले की जड़, मसला जड़ से खत्म हो जाए, मसला जो है ना उसकी यानी वो दूर हो जाए हमसे। वो क्या है? वो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने सही मफहूम के साथ अल्लाह ताला से ये बात कहना यानी गुनाहों से तौबा। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहला सवाल ये कि क्या गुनाह कर रही, क्या गुनाह कर रहा हूं, है ना, तौबा कर रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है कि क्या गुनाह कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद फिर उसको गुनाह को छोड़ना कैसा है, क्योंकि तौबा की शर्त है ही कि आइंदा नहीं करूंगा। ठीक है, अब आइंदा नहीं करूंगा भाई क्या मतलब आइंदा नहीं करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा आइंदा, ये पता भी है क्या आइंदा नहीं करूंगा? पता तो है नहीं क्या आइंदा नहीं करूंगा, बस कह दिया आइंदा नहीं करूंगा, वो क्या आइंदा नहीं करूंगा, कौन सी गलती कर रहा हूँ जो क्या आइंदा नहीं करूंगा। अच्छा फिर उसके बाद कैसे आइंदा नहीं करूंगा, राइट। ये तो आदतन हो रहा है, मतलब अजीब गरीब किस्म के हालात होते हैं। एक किसी ने सवाल पूछा अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि जी वो जो है ना वो मैंने जो है वो झूठ बोल दिया और फिर मैंने जो है ना वो बड़ी कसम खा ली। ठीक है ना, झूठ भी बोल दिया कसम भी खा ली, तो अब बड़ा परेशान ये क्या, अब ये मैंने क्या कर दिया। तो इस आजिज ने कहा कि भाई आपने आपने ये इतनी बड़ी कसम जो है वो कैसे खा ली? एक तो तौबा तो करें, अल्लाह ताला से गलती हो गई अल्लाह माफ कर दीजिए, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि ये इतना बड़ा आपने जो हरकत करी है ये नॉर्मल तो नहीं है कि कोई बंदा जो है वो ऐसे चलते फिरते जो है वो इतनी बड़ी गलती कर जाए, राइट। इस गलती के पीछे कोई बुनियाद होती है, कोई रीजन होते हैं, कोई कॉज होते हैं कि आपके लिए कि लगता है कि कसम खाना कोई अहमियत ही नहीं रखता था, है ना, आपके लिए जो है वो न जाने झूठ जो है वो क्या चीज आपके सामने है कि आप जो है वो ऐसे गोया के चलते फिरते जो आपने झूठ बोल दिया, है ना, और उसी तरह से चलते फिरते आपने जो है वो कसम खा ली, अल्लाह की कसम खा ली, राइट। तो आपको जरा अपने ना अंदर देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू, कि इतने बड़े गुनाह को जो है वो आपने इतना आसानी से कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि बाद में आपको अफसोस हो रहा है, नदामत हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस आइंदा इस गुनाह से बचना, ये कैसे बचेंगे? कहना तो बड़ा आसान है अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन क्या करना भी इतना आसान है जितना कहना आसान है? जब आपकी कोई चीज आदत में पड़ गई, घट्टी में पड़ गई है, या कोई चीज जो है वो आपके लिए इतनी कम अहमियत इख्तियार कर गई है, तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम जो है वो करना भी बड़ा आसान हो जाएगा इसको, राइट। जैसे मिसाल के तौर पर कोई जो है वो यानी एक इसने ना अभी पिछले दिनों आप लोगों को मैसेज भी किया हुआ है और उम्मीद है कि पढ़ा होगा लोगों ने, ठीक है, कि गंदी तस्वीरें देखना, ठीक है ना। अब किसी ने अपने कमरे के अंदर जो है ना वो नंगी तस्वीरों का एल्बम रखा हुआ है, ठीक है ना, पुराने जमाने में एल्बम रखते थे, अब तो फोन रखा हुआ है, नंगी तस्वीरों की ऐप को डाउनलोड करी हुई है, ठीक है ना। तो अब जो है ना उसने अपने फोन के ऊपर जो है ना वो गंदी गंदी तस्वीरें देखनी, फिर उसके बाद नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया और अल्लाह से कहा अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह आइंदा नहीं देखूंगा, है ना। तो भाई आपने अपने हाथ के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर एक ऐसी चीज रखी हुई है कि जिसके अंदर आपने बाकायदा इनका इंतजाम करके रखा हुआ है, अब आपने जो ये कह दिया कि आइंदा नहीं करूंगा, क्या आप मतलब कोई हकीकत में, हकीकत से करीब कोई आप बात कर रहे हैं? या बिल्कुल एक नॉन रियलिस्टिक किस्म की, अनरियलिस्टिक किस्म की बात कर रहे हैं कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो अपने कमरे के अंदर रखी हुई है इस चीज को। तन्हाई के अंदर आप जब भी तन्हाई में आएंगे आपने इस किस्म की हरकत फिर से कर लेनी है, राइट। तो ये जो कह देना है ना कि अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है ना, जब तक कि आप इस वजह गुनाह को, इस गुनाह की जो वजह है यानी वो गंदी तस्वीरों वाला एल्बम या जो गंदी तस्वीरों वाली आपने ऐप डाउनलोड करके फोन के अंदर रखी हुई है, या आपने जो वेबसाइट्स की लिस्ट बनाई हुई है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जा जा करके मैं इन चीजों को देखूंगा, जब तक आप इन चीजों को एलिमिनेट नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे अपने पास से, तो उस वक्त तक तो आपका ये कहना कोई मानी नहीं रखता ना। बात समझ में आ रही? फिर वही पूछना पड़, आर यू फॉलोइंग? तो इसी वजह से जो है ना, ये तौबा, जो तौबा कर भी रहे हैं ना, एक तो होता है ना कि तौबा कर ही नहीं रहे क्योंकि उन्होंने तो मानना ही नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया, उन्होंने तो मानना ही नहीं है, लेकिन नहीं, जो मान भी रहे हैं कि हाँ गलत काम करने की वजह से मुसीबत आती है और गलत काम को जो है वो छोड़ देना ये सब तौबा होती है, इवन वो भी तौबा नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तौबा की शराइत में से ये है कि आप कोई कदम ऐसा उठाएं कि भाई आइंदा आप उस गुनाह से बच भी सकें। वो तो आप कर नहीं रहे, वो तो आप करना ही नहीं चाहते। आपने सारे असबाबे गुनाह जो है ना वो इकट्ठे करके अपने पास रखे हुए और बोले चले जा रहे हैं मैं आइंदा नहीं करूंगी, आइंदा नहीं करूंगी, आइंदा नहीं करूंगी, है ना। कोई हैसियत नहीं है आपके इस बोलने की कि मैं आइंदा नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो तौबा जो है ना, ये पूरा समझ लें एक पीएचडी है इसके अंदर, क्योंकि हमें नहीं समझ है तो बहुत आसान सी चीज है, नहीं कि गुनाह बिना कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज है, लेकिन चूंकि हमारा नफ्स जो है ना वो इतना मोटा है, इतना सरकश है, और इतना जो है ना वो हम ना मानने का एटीट्यूड हमने बनाया हुआ है ना, इस वजह से तौबा जो है ना वो थी बड़ी आसान सी चीज लेकिन पहाड़ बन गई हमारे लिए, और उस पहाड़ को हम सर ही नहीं कर पा रहे हैं, पहाड़ को अबूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहाड़ मसला तौबा का नहीं है, मसला हमारे नफ्स का है खाली, ठीक है ना। ये हमारे नफ्स की वजह से तौबा जो है वो पहाड़ बन गई है, ठीक है ना, जो कि इतनी आसान सी चीज थी, ठीक है। तो ये तीन काम कर लें, गुनाह के ऊपर नादिम होना, शर्मिंदा होना, दूसरा ये कि ना करने का अल्लाह ताला से वादा करना, और तीसरा ये कि अब कैसे ना करना, ये इन असबाब को इख्तियार करना, और जो गुनाह के असबाब हैं उन गुनाह के असबाब को जो है ना वो अपने जिंदगी से दूर कर, ठीक है ना। तब कहीं जाकर के तौबा होगी, और जब तौबा होगी ना फिर उसके बाद अल्लाह ताला की मदद आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है ना, कज़ालिका नुंजिल मुमिनी, ऐसे ही हम ईमान वालों को निजात देते हैं उनकी मुसीबतों से, ठीक है। जैसे वो तौबा करते हैं ना ऐसे हम निजात देते हैं फिर उनको उनकी मुसीबतों से। कभी कभी इंसान किसी चीज को, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है तो बाकी लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए, कि कभी कभी इंसान किसी चीज को छोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर फिर गलती हो जाती है, इरादा होता है कि नहीं करेंगे। आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी पिछले जो 10 मिनट से आरिज बोले चला जा रहा है तो यही तो बोल रहे हैं भाई, ठीक है, कि जब किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नहीं छोड़ पा रहे, तो उस चीज के कॉजेस जो बन रहे हैं, जो असबाब बन रहे हैं, उन असबाब को दूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब असबाब क्या चीज होती है उसकी मिसाल भी देके, मिसाल के तौर पर बदनजरी, राइट। बदनजरी जो है वो आप किसी चीज को देख करके करते हैं ना, यानी आप बादल को देख के बदनजरी तो नहीं करते ना, पहाड़ को देख के, दरख्त को देख के तो बदनजरी नहीं होती ना, बदनजरी तो उस चीज को देख के होती है कि जो कि बद है, राइट। तो भाई जिस बद चीज को देख करके आप बद नजरी का गुनाह कर रहे हैं तो उस बद चीज को रिमूव करना पड़ेगा ना, उस बद चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस बद चीज के करीब जाने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि मैं उसके करीब ना जाऊं, ठीक है। कुछ लोगों को भी कभी इन्वॉल्व करना पड़ जाता है कि आप मुझे बचाएं, आप मुझे कीप मी बिजी, है ना, कीप मी अवे फ्रॉम दिस मीन्स ऑफ गुना, ठीक है ना। तो कभी हेल्प भी लेनी पड़ती है, इस यही तो शेख का यही तो कॉन्सेप्ट है, शेख का यही तो काम होता है कि शेख से इन चीजों को डिस्कस करके ये पूछा जाए कि मैं क्या असबाब इख्तियार करूं कि जिनसे कि मैं इस गुनाह से बच सकूं, या क्या असबाब है जो कि मुझे गुनाह की तरफ माइल कर रहे हैं, मैं उन असबाब को कैसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकूं, ये सारा काम होता है शेर शेर का, ठीक है ना। और हमने जो है पढ़वाना, फुकवाना है ना, और वजीफे लेना, और ज्यादा से ज्यादा दुआएं करवाना, बस हमने शेर को इस काम के लिए बनाया है। यानी डॉक्टर के पास आप जाएं, है किसी क्लिनिक में जाएं और जाके कहें, डॉक्टर साहब जरा दुआ कर दीजिएगा मैं ठीक हो जाऊं, है ना। डॉक्टर साहब हाथ उठाएं, एकदम से हाथ उठाएं और दुआ कर दीजिए, डॉक्टर साहब ने अब आप क्लिनिक से वापस आ जाएं, है ना। कितना अच्छा काम किया आपने, डॉक्टर के पास दुआ करवाने गए थे, या डॉक्टर साहब के पास जो है ना वो वजीफे लेने के लिए चले जाएं, डॉक्टर साहब आपको ना वजीफा छोटे से कागज के ऊपर एक तावीज बना करके डॉक्टर साहब को तावीज दे दें। भाई ये डॉक्टर का काम नहीं होता, ये तो आमिलों का काम होता है ना। उसी तरह शेख जो होता है ना, शेख ये आमिल नहीं होता, शेख जो होता है ना वो डॉक्टर होता है, रूहानी डॉक्टर, यानी रूहानी अमराज, गुस्सा, तकबर, उजो, गुनाह, दुनिया की मोहब्बत, है ना, इनका इलाज करने वाला डॉक्टर, उसको शेख कहते हैं, ठीक है। तो उसके पास जाके वजीफे पढ़वाने के लिए, वो आदतन कसम खाता था इसलिए बच नहीं सका, उस वक्त बैठी कसम खाने से। आदतन कसम खाना था, हो सकता है कि उसने आदत बनाई हुई थी कसम खाने की, तो उस वक्त भी उसने कसम खा ली, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि मैं जानता हूं, ठीक है। तो वो आदतन कसम तो नहीं खाते थे, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन पहले से चल रही थी, ऐसा भी तो होता है ना, खुद तो नहीं खाता था लेकिन कसम खाने वालों के साथ उठता बैठता था। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा सऊदी लोग, कल कल को मेरा बेटा भी यही कह रहा था, क्योंकि हम सब्जी की दुकान पे गए, है ना, और उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास जौजुल हिंद है, जौजुल हिंद जो है वो नारियल को कहते हैं, तो उसने आगे से कसम खानी शुरू कर दी, वल्लाई अक्सुमु कलाई की बुखरा वगैरह। तो मेरा बेटा कहने लगा कि ये लोग जो है ये तो हर वक्त कसम खाते रहते हैं, ठीक है। तो अब हालांकि वो सऊदी भी नहीं था, वो तो इजिप्शियन था, मैंने कहा बेटा ये सऊदी नहीं था, ये इजिप्शियन था, लेकिन ये अरब लोग जो है ना ये ऐसी वल्लाही उकसमु वगैरह, तो अब ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो भाई आप बेशक देसी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, आप भी कसम खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों की सोहबत से अपने आप को दूर रखना, ताकि आपके लिए कसम खाना जो है ना वो इतनी लाइट चीज ना बन जाए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनकी वजह से हमसे गुनाह हो रहा होता है, और हम जो है ना वो उन वजूहात को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम उन वजूहात को अपनी जिंदगी से दूर करें, ताकि जो है वो हम गुनाह से बच सके ना, ठीक है। तो आगे जो हमने आयात पढ़ी थी वो जकरिया, यानी जकरिया अलैहि सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने शुक्र किया शुरू किया यहाँ पर, तो उनका खुलासा तफसीर अभी पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह इस नेक्स्ट आयत के अंदर फिर एक वजीफा, तो आजकल हम वजीफों वाली आयतें पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि इसमें क्या वजीफा है, रब ला तजरनी फरदो अंत खैरुल वारिसीन, बेटा होने का वजीफा, ठीक है, कि जिसका बेटा ना हो रहा हो ना तो वो जो है वो, या बेटा ना भी हो रहा हो मतलब औलाद ना हो रही हो, तो उसके लिए वजीफा, ठीक है। लेकिन खैर वजीफे की हकीकत हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं और बात कर चुके हैं उसके ऊपर, कि बिल्कुल ही यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज हमने दूसरे साइड के ऊपर बात करी कि असल में जड़ से उखाड़ना जो है ना वो वजीफे ये वाले काम नहीं करते, मसलों को जो जड़ से उखाड़ने वाले। अच्छा, तो खुलासे तफसीर में हजरत फरमाते हैं कि और जकरिया, व जकरिया इज नादा रब्बहू रब्बे ला तजन्नी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, के जकरिया अलैहि सलाम के किस्से का तस्करा कीजिए कि जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ऐ मेरे रब मुझको ला वारिस ना रख, ठीक है, यानी मुझको फर्जंद फर्जंद दे दीजिए जो मेरा वारिस हो, ठीक है, और यूं तो सब वारिसों से बेहतर यानी हकीकी वारिस तो आप ही हैं, ठीक है। अब वारिस तो दुनियावी एतबार से मांग रहे थे, लेकिन फौरन तवज्जो इस तरफ गई कि कहीं गलती मुझसे ना हो जाए, कहीं मुझसे जो है ना बेअदबी वाले अल्फाज ना निकल गए हों, कि भाई हकीकी वारिस तो अल्लाह है और मैं जो हूं ना मैं किसी और को वारिस कह रहा हूँ, है ना, तो कहीं जो है ना वो अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए मेरे इस कलमे से, मेरे इस लफ्ज से, राइट, कि ए अल्लाह आप मुझे वारिस दे दिए। अल्लाह ताला की अगर शाने बेनियाजी यहाँ पर भी ट्रिगर हो गई ना कि वारिस मांगते हो और मैं हूं तुम्हारा वारिस, फिर भी तुम वारिस मांगते हो, तो पता चला मैं भी मछली के पेट में पहुंच गया। तो जकरिया अलैहिस्सलाम फौरन انت خیر الوارث ہے، بالکل احتمال ہی نہیں ہو کہ میں نے جو ہے نا وہ آپ کو بھلا دیا ہے، یا میں نے آپ کو بھول کر کے کسی اور وارث کی بات کر رہا ہوں. میں تو دنیاوی طور پر ایک خالی بیٹے کی بات کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ میں I'm not asking you anything. ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ میرے وارث نہیں، آپ حقیقی وارث نہیں. تو فوراً جو ہے نا وہ کور اپ کیا، ٹھیک ہے، انت خیر الوارث ہے. یہ ہوتے ہیں ڈرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں. میں نے کچھ بھی کر دیا ہو نا، میں نے کتنے ہی عبادتیں کری ہوں، میں نے کتنے ہی جو ہے وہ انسانوں کو ہدایت کے راستے کے اوپر، لائن کے اوپر لگانے کی محنت کری ہو، کتنے لوگ میرے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر کے اسلام قبول کر چکے ہوں، نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو میری کسی عمل کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا، اللہ تعالیٰ کو میرے کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے نا، ڈسپوزیبل سرنج، رائٹ، سرنج سے جو ہے نا وہ آپ دوائی پہنچاتے ہیں کسی کے نسوں کے اندر، اور پھر اس سرنج کو کیا کرتے ہیں، اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہماری حیثیت تو ڈسپوزیبل سرنج جتنی بھی نہیں ہے، جس سے کسی کی علاج کا فائدہ حاصل کر لیا جائے اور پھر اس ڈسپوزیبل سرنج کو اٹھا کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہم سے اپنے دین کا کام کروا لیں، ہم سے جو ہے وہ لیکچرز دلوا کے، کلاسز کروا کے، اور بہت سارے دین کے کام کروا کے اپنے بندوں کو دین کے اوپر لے آئیں، اور پھر ہمیں اٹھا کر کے جہنم کے حوالے کر دیں، ہمیں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے یہ کام، کیا مطلب، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے نا وہ نہیں، یہ کیا کیا ہے اللہ آپ نے، اس سے اتنا دین کا کام لینے کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ دین میں آئے ان کو آپ نے جنت میں ڈال دیا. ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ، ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. نو، اللہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، رائٹ. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی شان بے نیازی سے ایسے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، اے اللہ میں نے جو نیکی کا کام کیا آپ اس کو بڑی آسانی سے رد کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی میرے نیکی کے کاموں کی، لیکن اے اللہ مجھے تو ہے نا، جو میں نے نیکی کا کام کیا آپ کی دی ہوئی توفیق سے کیا، میں خود نہیں کر سکتا تھا، میں خود نہیں کر سکتا تھا، آپ نے جو مہربانی فرمائی، احسان فرمایا کہ مجھے توفیق عطا فرما دی، آپ نے اتنا احسان کیا اے اللہ، اب اس کے آگے اے اللہ قبولیت والا احسان بھی آپ میرے اوپر فرما دیجیے، قبولیت والا احسان. احسان یہ نہیں کہ آئی ڈیزرو قبولیت، نہیں، اے اللہ پہلے بھی آپ نے احسان کیا تھا، اے اللہ مزید احسان فرما دیجیے. احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ وہ کام کسی کے ساتھ کرنا جو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ہے نا، آپ نے احسان کر دیا کسی کو، آپ نے جو ہے وہ 10,000 روپے دے دی، حالانکہ وہ تو ایک پھوٹی کوڑی کا بھی مستحق نہیں تھا، اس کو آپ اٹھا کر کے آپ نے 10,000 دے دیے، یا آپ نے احسان کیا اس کے اوپر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، یا کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دینی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرما دی، ہم سے کوئی اور نیکی کا کام لے لیا، اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، ہم اس توفیق کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد توفیق بھی خالی یہ نہیں کہ عمل کی توفیق مل گئی سب کچھ سیٹ ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی دیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے، یہ بھی ہے، پکی بات ہے یہ، کب کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں عمل کی لیکن اس عمل کو قبول نہیں کرتے. تو قبولیت ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ سٹیپ ہے، تو اس کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ انت خیر الوارث ہیں، فوراً سے کور اپ کر کے کہ بہترین حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں، اس لیے فرزند بھی وارث حقیقی نہ ہوگا، بلکہ ایک وقت وہ بھی فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیٹا بھی چلا جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، سب کچھ دنیا کا ختم ہو جائے گا، لیکن اس ظاہری وارث سے بعض دینی فوائد اور منافع حاصل ہو جائیں گے، اس لیے اس کی طلب ہے، ٹھیک ہے. یعنی دنیاوی اسباب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو بیٹا جو ہے یہ دنیاوی اسباب میں سے ہے، جس طرح باقی چیزیں دنیاوی اسباب میں سے، ٹھیک ہے. ये नाजायज नहीं है बल्कि जायज है और नबियों की सुन्नत है। तो सुन्नत समझ के करेंगे तो दुनियावी असबाब की दुआ भी जो है वो इबादत बन जाएगी। ठीक है, सो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और हमने उनको यहया फर्जंद अता फरमाया और उनकी खातिर से उनकी बीवी को भी जो बांझ थी औलाद के काबिल कर दिया। ठीक है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की तरह से, ऐसे नहीं गया कि उनके घर में मरियम अलैहिस्सलाम की तरह से ईसा अलैहिस्सलाम भेज दिए, नहीं, बल्कि बीवी को जो है ना वो फिजिकली एबल बना दिया। हालांकि उनके ऊपर मेनोपॉज आ चुका था, बूढ़ी हो चुकी थी, अब वो यानी हमल की लायक नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने असबाब को ठीक कर दिया और फिर उन असबाब के जरिए से उनको यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। ठीक है, बगैर असबाब के जिनको अता किया था ना उनका जिक्र आगे आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो अल्लाह ताला ऐसे भी कर सकते हैं और अल्लाह ताला वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा जो है वो कम करते हैं बगैर असबाब के। और अल्लाह ताला की आदत क्या है, असबाब अता फरमा देते हैं और फिर उन असबाब के जरिए से काम करवा देते हैं। ठीक है ना, ये उमूमी आदत है अल्लाह ताला की, जो कि हम सब के लिए ये आदत जो है वो जारी है। ठीक है, बहरहाल ये बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो बस ये दो लाइनें पढ़ के आपको मैसेज पढ़ते हैं, आपने जो लिखा है कि उनकी बीवी को जो बांझ थी औलाद के काबिल कर दिया, ये सब अंबिया जिनका इस सूरत में जिक्र हुआ है नेक कामों में दौड़ते थे और उम्मीद व बेयम के साथ हमारी इबादत किया करते थे और हमारे सामने दब कर रहते थे, कानू लना खाशीन, अल्लाह ताला के सामने झुक के रहते थे, दब के रहते थे, आजजी इख्तियार करते थे, अल्लाह के सामने नाज इख्तियार नहीं करते थे। जी, आपने क्या लिखा है कि कबूलियत की वजह इखलास का ना होना, कबूलियत की वजह इखलास का ना होना है, कबूलियत का ना होना, अच्छा कबूलियत के ना होने की वजह क्या है, इखलास का ना होना। हाँ, सबसे बड़ी वजह यही बनती है कि अमल की तौफीक मिल गई, अमल तो कर लिया लेकिन उस अमल के अंदर इखलास नहीं था। ठीक है ना, तो इस वजह से अमल तो कर लिया अल्लाह की दीवी तौफीक से कर लिया, लेकिन चूंकि उसके अंदर इखलास नहीं था तो इस वजह से अल्लाह ताला ने अमल को कबूल नहीं किया। ये एक बड़ी वजह बनती है। और दूसरी वजह ये भी बन सकती है कि अमल तो कर लिया लेकिन अमल करने के बाद कोई ऐसा काम किया, अमल तो बड़ा इखलास के साथ कर लिया था लेकिन अमल करने के बाद कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से उस अमल को अल्लाह ताला ने जाया कर दिया। ठीक है ना, जैसे कुफर का कोई कलमा कह दिया, किसी अल्लाह वाले के साथ जो है वो लड़ाई दंगा कर दिया, राइट, किसी अल्लाह वाले के साथ दुश्मनी कर ली, अल्लाह ताला ने पिछले अमाल को जाया कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह वाले के साथ दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी है, और जब अल्लाह से दुश्मनी हो गई तो फिर कौन सी कबूलियत, कैसी कबूलियत। ठीक है ना, और बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। इखलास मतलब सिर्फ अल्लाह के लिए करना, जी इखलास का मतलब यही होता है कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद के ऊपर कोई नेक काम करना, अल्लाह के लिए करना, आखिरत के सवाब के लिए करना, यही होता है। तकब्बुर, तकब्बुर किया, नेक अमल तो कर लिया लेकिन उसके ऊपर तकब्बुर किया, बिल्कुल सही फरमाया आपने, तो तकब्बुर की वजह से जो है ना वो अल्लाह ताला ने कहा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अमल, तुम अपने आप को समझते रियाकारी का दिल में आ जाना अमल के बाद, अमल के बाद रियाकारी का दिल में आ जाना, नहीं, रियाकारी का लफ्ज है वो तो अमल के दौरान की नीयत किया जाता है। ठीक है ना, तो बाद में जो चीज आ गई है तो उसको तकब्बुर कह सकते हैं या उसको जो है वो कोई और गुनाह ऐसा जिसकी वजह से क्या बात अल्लाह ताला जाया फरमा देते हैं। तो बहरहाल इतनी इसमें बात की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, बात मकसद ये है कि डर दब के रहना, खाशीन, पीछे तफसील से कई दफा बात हो चुकी है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि कामयाबी की गारंटी जो है ना वो क्या, वो अमल करना नहीं है, कामयाबी की गारंटी जो है वो इल्म हासिल करना नहीं है, कामयाबी की गारंटी जो है ना वो इबादतें करना नहीं है, कामयाबी की गारंटी जो है वो अल्लाह वालों की सोहबत भी नहीं है, ये नहीं है कामयाबी की गारंटी। हाँ, बहुत अफजल चीज है, बड़ी फायदा, अल्लाह वालों की सोहबत के मुनाफिकीन को हासिल नहीं थी, है ना, नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहते थे मुनाफिकीन, तो क्या उनको कामयाबी मिल गई, नहीं, कामयाब तो नहीं हो सके ना वो, सोहबत के बावजूद, मदीना मुनव्वरा की हवाओं के बावजूद, फिजाओं के बावजूद कामयाब तो ना हो सके, है ना, तो गारंटी तो ना हुई ना फिर सोहबत। गारंटी क्या है, डरते रहना, खाशीन, खशियत, ठीक है ना, कोशिश करना, कोशिश पर किस नियत से कर रहे हैं कोशिश, तो उससे नहीं होता। असल में चीजें खाशीन। ठीक है, बहरहाल चलें, टाइम ऊपर हो चुका है क्लास का, तो आखिर तो आवाना अनिल, अलहमदुल्ला।